आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि कुमार और प्रस्तुत है 26 मार्च 2026 के मुख्य समाचार। मेटा ने कहा है कि वह उस जूरी के फैसले के खिलाफ अपील करेगी जिसमें पाया गया कि कंपनी ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को युवा यूजर्स को उनकी भलाई की परवाह किए बिना फंसाने के लिए डिजाइन किया था। कैलिफोर्निया की जूरी का यह फैसला हजारों ऐसे मामलों को प्रभावित कर सकता है जिनमें सोशल मीडिया कंपनियों पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। जूरी ने मेटा और गूगल दोनों को हर्जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें 20 वर्षीय वादी को $4.3 मिलियन का मुआवजा दिया गया। मेटा की प्रतिनिधि एस्ली निकोल डेविस ने कहा कि कंपनी इस फैसले से असहमत है और अपील करेगी। वहीं गूगल ने बयान में कहा कि यह फैसला यूट्यूब की गलत छवि पेश करता है, जो उनके अनुसार एक जिम्मेदारी से बनाया गया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, न कि सोशल मीडिया साइट। साइबर सुरक्षा विश्लेषक कॉलिन वॉक का मानना है कि अपील के सफल होने की संभावना कम है।
We've known for at least a decade now with tell-all books for former Google and Meta employees who come out and say, "Hey, we're using casino-style techniques in our algorithms to try and keep children on our screen so that we can sell more products." So it's not a particular surprise, long time coming, much like the tobacco litigation. So I think the jury's verdict will ultimately be upheld.
वहीं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस का कहना है कि यदि ऑस्ट्रेलिया आने वाले ईंधन टैंकरों की संख्या में बड़ी गिरावट आती है तो ईंधन मांग को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। नेशनल कैबिनेट अगले सोमवार यानी 30 मार्च को फिर से बैठक करेगी जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। देश भर में करीब 470 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां कम से कम एक प्रकार का ईंधन खत्म हो चुका है। प्रीमियर मिंस ने कहा कि किसी भी कदम को अन्य राज्यों और फेडरल सरकार के साथ मिलकर समन्वित तरीके से लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ विक्टोरिया में एक नियो नाजी नेता पर इंडिजिनस विरोध स्थल पर कथित हमले के मामले में मुकदमा चलेगा। आरोप है कि 33 वर्षीय थॉमस शुअल ने अगस्त में मेलबर्न शहर के केंद्र में हुए एक एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शन के बाद कैंप सॉबरनेटी स्थल पर धावा बोलने वाले समूह का नेतृत्व किया था। काले कपड़े पहने लोगों के इस समूह पर आरोप है कि उन्होंने इंडिजिनस शिविर में मौजूद लोगों को पकड़ कर रखा और उनके साथ मारपीट की। इस घटना में 3 लोग घायल हुए, जिनमें एक महिला के सिर पर लगी चोट के बाद उसे स्टेपल लगाने पड़े। शुअल ने इस मामले में लगे 5 आरोपों, जिनमें हिंसक गड़बड़ी, झगड़ा और अवैध हमला शामिल है, को स्वीकार करने से इनकार किया है। वहीं एक पूर्व AFL खिलाड़ी ने कहा है कि अपनी यौन पहचान के बारे में खुलकर बात करके वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं। लेह रिश्विक ने कम्युनिटी रेडियो जॉय 949 पर बताया कि उन्होंने करीब 5 साल पहले अपने दोस्तों और परिवार के सामने गे होने की बात मानी थी। रिश्विक ने ब्रिस्बेन लायंस के लिए एक मैच खेला था और बाद में SANFL में नॉर्थ एडिलेट के साथ भी जुड़े रहे। 41 वर्षीय खिलाड़ी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अपने अनुभवों के बारे में बताने से दूसरों को मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में मध्य पूर्व में जारी युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका के बयान एक दूसरे के विपरीत सामने आए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 दिनों में ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत की है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास इराकची का कहना है कि उनका देश फिलहाल अपनी रक्षा जारी रखे हुए है और बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के एक अधिकारी ने सरकारी मीडिया को बताया है कि युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान ने 5 शर्तें रखी हैं, जिनमें सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म करना और हर्जाने का भुगतान शामिल है। अब खबरें भारत से। ट्रांसजेंडरों के अधिकार और सुरक्षा से जुड़ा विधेयक बुधवार को राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जबकि लोकसभा में इस विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करेगा और उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करेगा। नए प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पर सजा बढ़ाकर अधिकतम 14 साल कर दी गई है और जुर्माने को बढ़ाकर अधिकतम 5,00,000 रुपये तक कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे समुदाय की गरिमा के खिलाफ बताया और कहा कि पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य करना मुश्किलें बढ़ाएगा। इसी के साथ 26 मार्च के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।